आज हम एक विशेष बात पे पहले चर्चा करेंगे और फिर बाबा हमारे सामने आने वाले हैं। एक हफ्ता है, एक हफ्ता का कुछ विशेष अभ्यास भी तय करेंगे। आज का टॉपिक है बाबा की मुरली अनुसार संस्कार मिलन की रास। पसंद है सभी को टॉपिक? हमारा किसी से भी संस्कारों का टकराव न हो, यह है रास करना। जिसके साथ भी रहें मिल जाएं, इसके लिए हम क्या क्या करेंगे? बहुत प्रैक्टिकल बातें हम करेंगे। तो इसके लिए पहली चर्चा है कि हम दो स्वमान रखेंगे अपने पास। मैं देव कुल की महान आत्मा हूं, रॉयल आत्मा हूं, और दूसरा है मैं बाप समान हूं। संस्कारों का टकराव क्यों होता है, उसके कुछ कारणों पर हम ध्यान दें। संस्कारों का टकराव तो कोई भी नहीं चाहता, जो टकराते हैं वो भी नहीं चाहते, परंतु नुकसान बहुत होता है संस्कारों के टकराव से। हमारी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, खुशी नष्ट हो जाती है। सबको अनुभव है, थोड़ा भी टकराव हो जाए तो न शांति रहती न योग लगता, कुछ भी नहीं रहेगा। तो हम पहले तो अपने अंदर एक श्रेष्ठ इच्छा धारण करेंगे कि मुझे किसी से टकराना नहीं है। योगी बनना है तो टकराना नहीं है, टकराएंगे तो योग का सुख नहीं मिल पाएगा। ठीक बात है ना? हम किसको महत्व दें, टकराने को या योग के परम सुख को? पहले हमें अपने मन में निश्चय पूर्वक ये धारणा बैठानी है। जिस चीज को मनुष्य महत्व देता है उस पर उसका ज्यादा ध्यान रहता है, उसकी ओर ही वो चलता है। किसी व्यक्ति को इच्छा है मुझे बहुत मान मिले तो वो वैसे ही रास्ते निकालेगा, वहीं जाएगा जहां से उसको मिल सकता है, जहां नहीं मिलता वहां वो नहीं जाएगा। योगी बनना है तो कुछ चीजों के त्याग का हमें दृढ़ संकल्प करना ही पड़ेगा, चाहे योगी बनने के लिए चाहे सबको अनुभव है। जब टकराव हो जाता है तो निर्णय शक्ति समाप्त हो जाती है। हम काम कर रहे हैं, हमारी कार्य शक्ति धीमी पड़ जाती है। जो काम एक घंटे में होने वाला था वो दो तक चलेगा, और काम करने का सुख भी प्राप्त नहीं होगा। बहुत सुखद कार्य हमें मिला हो, बहुत अच्छी सेवा हमें मिली हो, हम कहीं ज्ञान दे रहे हों, बहुत अच्छा, लोगों को ज्ञान देने से आपको पता है हमें बहुत खुशी होती है। सबसे ज्यादा खुशी होती है ज्ञान देकर। मनोहर दादी सुनाया करती थी, कोई कन्या रोती थी ना, कोई आ जाता था, मैं उसे कह देती थी जाओ समझा के आओ। पहले तो वो ना करती थी, फिर मैं उसे भेज देती थी समझा के आओ, समझा के आएगी तो खुश, रोना खत्म। तो सेवा कितनी भी अच्छी हमारे सामने हो, उसे पहले टकराव हो जाए तो सेवा पर न उसका हमारा प्रभाव होगा बहुत अच्छा, और न हमें सेवा का सुख मिलेगा। स्थूल कार्यों में भी नुकसान, मानसिक स्थिति में भी नुकसान, फिर हमारे टकराव ऐसे हो जाते हैं कि एक दूसरे से बात नहीं करते, तो बाबा के यज्ञ में बहुत बड़ा नुकसान, सेंटरों में ऐसा हो जाए तो सेवाओं पर बहुत बुरा इफेक्ट आता है उसका। तो हम अपने मन से ये निर्णय करें हमें टकराना नहीं है। पसंद है सबको? पसंद है? मैं सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बात आप हाथ उठाएंगे ही पक्की बात है, कौन कौन ये चाहते हैं कि कभी टकराव ना हो। बिल्कुल ठीक बात है, वो तो चाहना तो सबकी यही है, और टकराव भी हो जाता है थोड़ा बहुत, हम न टकराएं दूसरा आके टकरा जाए, ऐसा भी होता है। देखो गाड़ियां चलाते हैं ना, ऐसा होता है ना, कल हो गया ना सिरोही में जो ढलान है, सिरोही से पहले एक गैस का टैंकर जा रहा था, उसका ब्रेक फेल हुआ, आगे जा रहे थे बाइक पर कोई युगल, बस उनकी दोनों की मृत्यु हुई, जोर से उनको टक्कर मारी पीछे से, और ड्राइवर भी पता नहीं घायल हुआ मरा, और भी एक दो जो उसकी चपेट में आ गए। तो पीछे से ही कोई टकराने आ जाए हमारे सामने, आगे से टकराने आ जाए, तो हमें क्या करना होगा, टकराएंगे या बचेंगे, हमें बचना होता है ना। दूसरे का ब्रेक फेल हो सकता है पर हम तो अपने ब्रेक को ठीक रखेंगे ना, हम तो अपनी गाड़ी को मोड़ सकते हैं। तो टकराव से वो बचते हैं जो झुक कर चलते हैं, जो मुड़ कर चलते हैं। और झुकना और मोल ढोना ये कौन कर सकते हैं, जो कौन झुकते हैं, कौन मुड़ते हैं, हैं? बिल्कुल सहज सी बात, जो टहनिया पेट की टहनिया कौन सी मुड़ती है, जो लचीली, लदी हुई नहीं, जो लचीली हैं, और जो कड़क हैं, सूख गया तो टूट जाएंगे ना, अगर मोड़ेंगे उन्हें तो वो टूटेंगी। तो हम भी अपने को लचीला, लचीला अर्थात सरल चित्त, योगियों की सबसे सुंदर धारणा है सॉफ्ट संस्कार, सरल संस्कार, सबको ये बनाने हैं, इस पर विशेष ध्यान सभी को देना है। तो टकराव बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। प्रैक्टिकल और बात करें, आप किसी के साथ काम करते हैं, कोई आपका इंचार्ज है, उसका स्वभाव कड़क है, उसके बोल मैं बोलूंगा नहीं कैसे हैं आप जानते हैं, तो आप क्या करेंगे, आपको उनके साथ काम करना है, क्या करेंगे? आपके घर में कोई ऐसा है, माताएं बैठी हैं, कोई ऐसा है कि जो टकराएगा ही आपसे, उसका बोलना, उसका काम करने का तरीका, उसका स्वभाव का चिड़चिड़ापन टकराव का कारण बनता है। किचन में काम कर रहे दो, एक ने माचिस इधर रख दी, उस पर लड़ाई शुरू, यहां क्यों रखी, ये जगह है कोई रखने की, माचिस छोटी सी चीज, उसको उठा के इधर भी रखा जा सकता है, लेकिन उससे पहले लड़ाई, क्या करेंगे आप? बहुत प्रैक्टिकल बताओ, मैं सामने एक दो को देखा तो ही मुझे याद आई, उनके इंचार्ज थोड़े कड़क हैं, तो उनको कठिनाई होती है, लेकिन वो एडजस्ट करके चल रहे हैं। गुण बताओ अपने, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, गुण बताओ, सहनशील होना। और देखो, जब तक उस व्यक्ति के मन में जो नीचे है ये संकल्प है कि मुझे इनके साथ ही रहना है और मुझे सेवा करनी है बाबा की, तो वो सब सहन करेंगे, झुकेंगे, सुनेंगे, और जिस दिन उन्हें इंचार्ज बना दिया जाए उस दिन क्या होगा, होगा कुछ या नहीं होगा? ऐसा बहुत लोगों को देखा गया जिनको जीवन में दूसरों से प्यार नहीं मिलता, वो पहले तो ये सोचते हैं कि हम बड़े हो जाएं हम सबको प्यार करेंगे, पर सत्यता क्या होती है, जिनको प्यार नहीं मिलता वो प्यार देना भी नहीं जानते। तो जो दूसरों को प्यार नहीं दे रहे वो एक ऐसे वृक्ष का निर्माण कर रहे हैं जिससे किसी को प्यार नहीं मिलेगा। जिन बच्चों को माँ बाप का प्यार नहीं मिला, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, कुमार हैं कई, उन्हें बचपन से माँ बाप का प्यार नहीं मिला, या किसी को थे ही नहीं, बचपन में मृत्यु हो गई थी, और किसी ने पाला, किसी का दुर्व्यवहार मिला, जीवन भर बहुत अच्छा ज्ञान लेते हुए वो किसी को प्यार नहीं दे पाते। जिसको सम्मान नहीं मिला वो भी दूसरों को सम्मान नहीं दे पाते। ये ऐसी सूक्ष्म गति संगठन में दिखाई देती है। तो हमें बहुत सहनशील बनना है और एक संकल्प कर लेना है, जो व्यवहार हमसे हो रहा है वो हो हम दूसरों से नहीं करेंगे। हालांकि मैंने कहा कि वो व्यक्ति वैसा ही करता है, बहुत लोगों को मैंने देखा, मेरे पास आते आए 10 साल हो गए आते आते, ये व्यक्ति हमें बहुत तंग कर रहा है, ये ऐसे बोल, जब वो बड़े बन गए तब उनके छोटे वाले यही शिकायत कर रहे हैं, ये हमें ऐसे तंग कर रहा है, ये हमें बहुत बोल रहा है। पहले वो सोचता था कि मैं बड़ा बनूं तो मैं सबको बहुत अच्छी तरह रखूंगा, लेकिन जब वो बड़े बन गए तो उनका व्यवहार भी वही था जो उनके बड़ों का उनसे था। हमें इस चेन को तोड़ना चाहिए, समझ गए ना, चेन को तोड़ना। हमें अब वैसा व्यवहार करना है दूसरों से जैसा दूसरे हमसे चाहते हैं या जैसा हम दूसरों से चाहते हैं। ये संस्कारों का टकराव व्यवहार की कमजोरी से ही होता है। एक और चीज पर हम ध्यान दें, इमीडिएट रिएक्शन, तुरंत रिएक्ट करना, तुरंत प्रतिक्रिया करना, जरा भी धैर्य नहीं। किसी ने कुछ कहा और तुरंत एक की बजाय दो, ये टकराव को बढ़ाने का प्रमुख कारण बनता है। जिसको टकराव से बचना है उसे चाहिए छोटी बातों में डिबेट न हो, सहज भाव, एक कहे दूसरा माने, बुरा भी कहा तो सहन करके आगे बढ़े, हमारी इच्छा के विरुद्ध कहा तो भी हल्का लेके आगे बढ़े, कुछ चीजों को हल्के रूप से हटा दें। एक व्यक्ति क्रोध कर रहा है, कुछ बुरा बोलेगा मनुष्य क्रोध में, हम भी क्रोध करके बुरा बोले तो लड़ाई कितनी देर चलेगी, लंबी हो जाएगी ना। और हम जल्दी अपने को कंट्रोल में रखें, एक व्यक्ति बोल रहा है, हम थोड़ा अपने को कंट्रोल में रखें तो हमारा स्वयं को कंट्रोल करना क्या फायदा होगा, दूसरा व्यक्ति बोलो क्या होगा, नहीं और अच्छी बात, अपनी गलती को रियलाइज करेगा। अगर हम भी लड़ बैठे तो वो अपनी गलती को रियलाइज नहीं करेगा, हमारा अहम, उसके अहम ने हमारे अंदर अहम को जगाया और हमारा अहम उसके अहम को और बढ़ाएगा, लड़ाई लंबी हो जाएगी। किसी किसी की लड़ाई बहुत लंबी हो जाती है, हमें इसको समाप्त करना है। और बताएं आप अनुभव की बात, अगर हमें टकराव से बचना है तो क्या करना है, है? गुण देखने हैं, शुभ भावनाएं रखनी है। भाई लोग, हाँ जी, ये बहुत अच्छी चीज होती है, हाँ जी। और इन्होंने बहुत अच्छा स्लोगन बोला, एक चुप सो सुख, चुप रहेंगे तो 100 गुना सुख पाएंगे। पर चुप रहना सहज है, माताएं बताएंगी, पीछे वाली माताएं, चुप रहना सहज है या उस टाइम चुप रहना लगता है हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है, ये तो हम चुप रह गए तो लोग कहेंगे बड़े कायर हैं, चुप बैठ गए, देखा जरूर गलती की होगी तभी तो चुप रहे, इनकी गलती होगी तो बोल नहीं रहे कुछ, लोग तो ऐसा सोचते हैं ना। परंतु हमें चुप रहना है या दूसरों के इन विचारों से प्रभावित होकर बोलने लगना है, ये हमें सोचना है। हम सत्य हैं तो सत्य हैं, सत्य में क्या है, सत्य में शक्ति है, स्वतः ही सिद्ध होने की शक्ति है। दूसरी बात भी है, सत्य की विजय है, पर आजकल क्या है, कलयुग के अंत में सत्य की हार है, विजय है लेकिन बहुत लंबे समय के बाद, तब तक वो विजय भी उसका सुख खत्म हो जाता है, पांच साल में विजय हुई, छह मास के बाद विजय हुई, तब तक विजय का सुख खत्म हो चुका होगा, इतनी हार हो जाती है। लेकिन सत्य में शक्ति है। अगर सत्य के विश्वास के आधार पे आत्मा अपने को निसंकल्प रखे, विचलित न हो, तो सत्य बहुत शक्ति देता है। और सत्य दूसरा क्या अनुभव कराएगा, जो बहुत सुंदर अनुभव है, जो हमें करना है और बहुतों को हो रहा है, नहीं, जिधर सत्य है उधर बाबा है, ये बाबा ने कहा है ना, बाबा ने बहुत बार कहा, जिधर सत्य है उधर मैं हूं। परंतु हम सत्य की हार देखकर क्या बोलने लगते हैं कि बाबा भी इनके ही साथ है। बहुत लोग बोलते हैं बाबा भी इनके ही साथ है, सत्य के साथ नहीं है, बाबा भी झूठ को साथ दे रहा है। बाबा झूठ को साथ नहीं देता, कुछ लोग झूठ को साथ दे सकते हैं, क्योंकि कलयुग में झूठ ही झूठ है, असत्य ही असत्य है, तो एक असत्य को 100 असत्य मिल जाएंगे। अभी सत्य है ही एक और 100 के बाद दूसरा सत्य है, तो उसको मिलने वाले लोग कम ही होंगे ना, 1% है। तो हम अपने सत्य में विश्वास रखकर अपने को शांत करें, शांत करें। और अनुभव सुनाओ, टकराव से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, मम्मी का लड़की के साथ टकराव, लड़की माँ को दोष दे रही है, माँ लड़की से परेशान हो रही है, क्या करेंगे। अभी एक इसी ग्रुप में जो महात्माओं का है ना, एक युगल मुझसे मिलने आया, 2 लड़कियां, एक 6 साल की एक 3 साल की, एक माता की। ये जो 6 साल की लड़की, इससे माता बहुत दुखी, 6 साल की केवल, अभी तो पैर पालने में ही है, तो बहुत दुखी, कहा मुझे चैन नहीं लेने देती, योग भी नहीं करने देती। अभी कल परसों की बात है, या कल सवेरे आई मेरे पास, क्या करें, क्यों है ऐसा, नहीं और कुछ, पिछले जन्मों का हिसाब लेकर आई है, कहा जन्म लेते ही जैसे लगने लगा के कुछ गड़बड़ है, और लड़की का जन्म हुआ और सुख चला गया और उसकी उपस्थिति इनको कष्ट दे रही है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। टॉपिक से हटकर बात है, पर आप सब की जानकारी के लिए आप सब दूसरों को सिखाएंगे भी, क्या करना चाहिए, नहीं और कुछ, और कुछ, क्षमा याचना करनी होगी उससे, फिर शुभ भावनाएं देनी होंगी, दुआएं। लेकिन क्षमा याचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसने उसको बहुत सताया है, अब गलती तो इसकी है ना, माँ की, आत्मा की, अब वो बदला लेने आई है, तो वो इसको देखते ही सुखी नहीं है, क्योंकि इसने उसको बहुत सताया है। तो अगर ये क्षमा याचना करती है, शुभ भावनाएं रखती है, तो उसका चित्त तेजी से शांत हो जाएगा। ऐसा संबंधों में आजकल टकराव बहुत चलता है। एक बात मुझे और कहनी है, बहुत अच्छी है, आप सबके काम की भी है और सिखाना भी है आपको। कभी कभी मनुष्य से ऐसी गलती होती है जीवन में, उसकी गलती उसको ही बार बार परेशान करती है। बाबा को भी सुना दिया, बाबा ने कहा मुझे सुना दो, फिर भी मन हल्का नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, यही, बिल्कुल यही, अपने को भी क्षमा करना। बहुत कुमारों की बहुत कहानी है ये, कोई ऐसी गलती जीवन में हो गई, वो बार बार मन के चित्र पर उभर कर आ रही, मन की स्क्रीन पर उभर कर आ रही है, वो भूल नहीं रही, उसका इफेक्ट हो रहा है। अपने को भी क्षमा कर दें, क्योंकि जो कुछ हुआ हो गया ना, वो तो पूरा हो गया, अब हम एक सुंदर मार्ग पर हैं। इसमें हमें बाबा ने पिछला सब कुछ डिलीट करने का, नष्ट करने का सुंदर तरीका बता दिया है, उसको अपनाएं। और अपने से भी कुछ हो गया हो तो उसको भी, अपने को क्षमा करके उसे हल्का करें, ये एक बहुत सुंदर विधि है स्वयं को भी क्षमादान देना, ठीक है ना। और बताओ टकराव क्यों होता है, भाई बताएंगे। हाँ, आपसी अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी, एक दूसरे को ठीक से न समझना, इसे भी बहुत गड़बड़ होती है संगठन में, टकराव होते रहते, फिर संस्कार मिलेंगे नहीं, दूरी बढ़ जाती है। तो हमें एक दूसरे की भावनाओं को भी समझकर सम्मान देना चाहिए। जब हम अलौकिक परिवार में हैं, तो अगर हम ये दृष्टि रखते हैं कि ये भी बहुत महान हैं, इन्होंने भी बहुत त्याग किया है, तो हमारी भावनाएं बदल जाती है। मैं एक छोटा सा अनुभव सुनाऊं। हमारे पास जब हम शुरू में आए और किचन में हमारी ड्यूटी लगी, तो एक बहन ऐसी थी जिसको हाई ब्लड प्रेशर था, बहुत समय से बुजुर्ग थी, गुस्सा उसको बहुत आता था, हाई ब्लड प्रेशर वालों को आता ही है गुस्सा, तो हमें लगता था ये कहां से किचन में आती है, उसकी थोड़ी सी ड्यूटी भी थी, वो आती भी थी, अशांति जैसी हो जाती थी। तो पहला ही साल की बात है मेरा, जब मैं किचन में 69 की, तो मेरे को उसको देखते ही लगता था ये क्या बड़ी अशांति करती है, क्योंकि क्रोध करना जैसे किसी का अच्छा संस्कार होता है ना, उसका ये संस्कार हो गया था, जो भी आएगा उसको दो चार बातें सुनाना। तो एक दिन की बात है, दो बुजुर्ग भाई हमारे पास रहते थे मधुबन में, तो दो बुजुर्ग और हम छोटे, हमारी गहरी दोस्ती। तो मैं और वो म्यूजियम से आ रहे थे वापस, पैदल का ही जमाना था तब, तो सब पैदल आते थे। तो उसने मुझे कहा, तुम्हें दो आत्माओं का साथ बहुत अच्छा मिला है। मैंने पूछा कौन कौन, तो उसने पहला नाम उसी का लिया। तो मैंने रिएक्शन नहीं किया, मैंने कहा क्यों, कहा अरे भाई समझो, 50 साल, तब शायद 30-35 साल हुए थे, इतने समय से ये इन्होंने त्याग तपस्या की है, ब्रह्मचर्य अपनाया है, हम गृहस्थ में रहे हैं, हम जानते हैं ब्रह्मचर्य पालन करना कितना कठिन काम होता है। उसने ऐसे भावना से कहा, मुझे समझ में आया कि यार बात तो बड़ी जोरदार है, इतने समय से ये पवित्र जीवन अपना के चल रहे हैं, बाबा के कार्यों में लगे हुए हैं, दे आर ग्रेट। और वहां से मेरी भावनाएं बदल गई, और मेरी भावनाएं बदलते ही उसकी भी भावनाएं बदल गई। ये बहुत एक सूक्ष्म बात है, हमारी भावनाएं बदलते ही दूसरों की भावनाएं भी हमारी तरफ जैसी भी हों वो बदलने लगती हैं। हालांकि वो मेरे से नहीं लगती थी, पर फिर भी उसका मैंने देखा और अच्छा व्यवहार हुआ। और अगर किसी व्यक्ति के लिए हम ये दृष्टिकोण रख लें, ये तो है ही क्रोधी, इस समय इस बात पर हमें विशेष अटेंशन देना है, भाई ये तो है ही बुरा, ये तो बोलता ही बहुत है, ये तो है ही क्रोधी, ये तो लड़ने वाला है, तो क्या होगा, सो पवित्र आत्माएं सोच रही हैं, ये तो बड़ा क्रोधी है, तो उसका क्रोध छूटेगा। हमने स्टैंप, 100 लोग स्टैंप लगा रहे हैं रोज, ये बहुत क्रोधी है, तो उसके क्रोध पर स्टैंप लग रही है ना। इसलिए ये जानते हुए कि हम बहुत महान हैं, हमारे शब्दों में सिद्धि भी है, किसी के शब्दों में फुल सिद्धि, किसी के में आधी, पर है सबके पास। इसलिए हमारा बार बार का कुछ भी बोलना दूसरों पर स्टैंप लगाने जैसा है, इस पर हम बहुत ध्यान देंगे। और बोले क्यों होता है टकराव, क्यों नहीं मिलते संस्कार, पिछले जन्मों का हिसाब किताब, अब उसको क्या करेंगे, वो तो पिछलों का है। तो हम बहुत अच्छी तरह अपने और उनके देव स्वरूप को सामने लाएं, उनके भी जिसे हमारा टकराव है, आप उसके भी देव स्वरूप को सामने लेकर देखना, लाकर देखना, मैं देव कुल की महानात्मा हूँ, अपना देव स्वरूप सामने आए, तो वो भी देव कुल की महानात्मा है, वो भी तो देव स्वरूप में थी ना हमारे साथ, इसको अपने सामने लाना, तो आप देखेंगे दूसरे का व्यवहार बदलता जाएगा। ये एक बहुत ही सुंदर रॉयल तरीका है संस्कार मिलन का। और बोले भाई, बोले इधर वाले, संस्कार टकराव और मिलन, नीचे वाले बताओ, सबको अनुभव है ना, कोई आपसे टकराता होगा, किसी से आप टकराते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये भी ठीक कहा, कड़वे बोल। और बोलो, दूसरों को सम्मान न देना, मैंपन, अहम, इन सब चीजों पर भी हमें बहुत ध्यान देना है। लेकिन इससे पहले हम ये रियलाइज करेंगे और चेंज करेंगे कि हम तो किसी से नहीं टकरा रहे, हमारी किसी कमी के कारण दूसरों को कष्ट तो नहीं पहुंच रहा। देखो एक सुंदर सा अनुभव आपको सुनाऊं, बात 10 दिन पहले की है। मुझे एक मिले, मैं बाहर था उड़ीसा में, एक कुमार मिले और उसने कहा मेरे पास एक छोटी सी समस्या है, आप जानेंगे है तो मेडिकल, कि मेरे दांत से मेरी जीभ बहुत कटती है, रोज कटती रहती है, मैं क्या करूं। बोलो ऐसी समस्या आपके पास आए तो क्या उत्तर देंगे आप, डॉक्टरों की है ऐसे तो, डॉक्टर बैठे हैं हमारी सभा में, सोचो डॉक्टर्स क्या उत्तर देंगे। कहा ऐसे ही कट जाती है और मैं बहुत दुखी हो गया, मेरी जीभ ठीक ही नहीं रहती, अभी ठीक हो ही रही तो दूसरी जगह कट गई, ब्रेन स्टेबल नहीं है तो क्या करे बेचारा वो ब्रेन के लिए। तो मैंने तो उसे सिंपल सी बात बताई कि तुम्हें जीभ बहुत चली है पिछले जन्मों में, समझ गए ना, जीव से दूसरों को कष्ट ज्यादा पहुंचा है, उन सब से क्षमा याचना करो कुछ दिन, तो तुम्हारी जीव को भी सुख मिलने लगे। हालांकि सुख दुख तो आत्मा मन की बात है, पर जीव को भी तो कष्ट हो रहा ना, बार बार कट जाए, लाल हो, तो जीव के द्वारा दूसरों को ज्यादा कष्ट दिया जाना ये भी अच्छी बात नहीं होती। कड़वे बोल से एक व्यक्ति पहले ही कमजोर है, हम उसे निराश कर दें बोल के, तुम सफल नहीं हो पाओगे, पहले ही कह दें, तुम बिल्कुल सुधरोगे नहीं, तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं, कई बोलते हैं ऐसे, ये हमें नहीं बोलना है। हमें तो क्या करना है, मुर्दों में जान डालनी है, डॉक्टर नहीं डाल सकते, हमें डालनी है, डालनी है या नहीं, मुर्दों में जान डालनी है, जो हिम्मतहीन हो गए उनकी हिम्मत बढ़ानी है। अब दूसरा स्वमान, मैं बाप समान हूं, हमें बाप समान की कुछ बातें रख लेनी है अपने पास, केवल ये नशा ही नहीं लेकिन इसको बहुत प्रैक्टिकल स्वरूप देना है। मैं बाप समान हूं तो मुझे सबको क्या बाबा की तरह सुख देना है, एक धारणा, ये बहुत सुंदर धारणा, सब इसकी सुंदरता को जानते हैं, जो सुख देते हैं उनका टकराव नहीं होगा, सुख देना है ना, उनको फील होगा उनके द्वारा किसी को कष्ट पहुंच गया तो उनको बहुत माइंड होगा और वो उसको ठीक करेंगे, क्षमा मांगेंगे। तो बाप समान हम हैं, बाप समान हमारे बोल हों, बाप समान हम सुखदाई हों, बाप समान हम निरहंकारी हों। अब दो बातें आपको बतानी है, निरहंकारी जितने होंगे संस्कार मिलन होता जाएगा, सुखदाई होंगे स्वतः ही हम स्वयं को चेंज करते जाएंगे। दो बातें और बोलो, हम बाप समान हैं तो कुछ चीजों में हमें साक्षी होके रहना है, साक्षी भाव बहुत सुंदर बड़ी धारणा है हमारे जीवन की, सब खेल चल रहा है, सुंदर खेल। और एक धारणा बहनों की ओर से, माताएं बताएं हम बाप समान हैं तो समा लेना है। बहुत अच्छी बात बताई, समा लेना है। ये पांच धारणाएं, समाने वाले भी टकराते नहीं। समा लिया अर्थात खत्म कर दिया, कोई बात हुई खत्म कर दी। तो ऐसा लक्ष्य बना लें, हम बातों को बढ़ाएंगे नहीं घटाएंगे, हम मित्रों की संख्या बढ़ाएंगे शत्रुओं की संख्या घटाएंगे। ये पक्का कर दें जीवन में, हमें छोटी छोटी बातों में अपने शत्रु पैदा नहीं कर लेने हैं। हमारे शत्रु ज्यादा होंगे तो वो हमारा मार्ग कहीं ना कहीं अवश्य रोकेंगे, चाहे हम कितने बड़े हों। इसलिए हमें शत्रु नहीं बनाने, मित्र बनाने हैं। उसमें सहन भी करना पड़े, अपनी भावनाएं भी अच्छी रखनी पड़े। और बाबा के द्वारा ये पांचों बातें, सुखदाई, दूसरा क्या था, निरहंकारी, समा लेना, साक्षी भाव और बोल। बोल बहुत बड़ी चीज है, सब जानते हैं। देखो बाबा हमारे सामने बैठता है, हम अव्यक्त बाबा को इस दृष्टि से देखें, उसको पता है सबने क्या क्या किया है, पर बोल कैसे, प्यार बरस रहा है। अगर वो वैसा बोले जैसा सबने किया है तो उसे किसी को प्यार की फीलिंग नहीं होगी, कोई उसे प्यार का सागर मानेगा भी नहीं, कोई उसे अपना भी नहीं मानेगा। शिक्षक होते हुए भी, सदगुरु होते हुए भी, जो हमने किया वो सब समा दिया और प्यार की बरसात। तो ये पांचों चीजें हम ध्यान देंगे। अब बाबा आने वाले हैं, 7 दिन है हमारे पास। ये दोनों स्वमान हमारा पहला अभ्यास होगा। मैं 2 चीजें और जोड़ देना चाहता हूं, जिसको हम पूरा सीजन लेकर चलना चाहेंगे। आप मुझे भी याद दिलाते रहना, मैं भूल जाऊं तो। मैं साक्षी दृष्टा और साक्षात्कार मूर्त हूं, क्योंकि ऐसा समय आ रहा है जब हमें साक्षात्कार करना है या कराना है। कुछ माताओं को करना है, वो बोल रही हैं, और कुछ को भाइयों को कराना है, कराना है। आज मैं सवेरे ही निकला तो कोई वीडियो वाले आए हुए ना, ब्रह्मा कुमार हैं, एक माता भी है, तो मुझे बताया, सुनो भाई जी, 2 सन्यासियों का हम वीडियोग्राफी कर रहे थे, उन्होंने सुनाया, हम बाबा के कमरे में गए, बाबा से लाइट आई और लाइट बोल रही थी, बच्चे 2012 में बहुत बुरा हाल हो जाएगा संसार का। और भी कुछ कुछ बताया, मैं भूल गया, बहुत अच्छे अनुभव। तो मैं सोच रहा था सब काम बाबा कराता है, न जाने किसको वो क्या अनुभव करा दे, इनमें से भी किसको क्या गुड फीलिंग उसने अंदर अंदर दे दी होगी। जिसका भगवान से जितना सच्चा प्यार होगा उतना उसको ऊपर से मिल गया होगा ना, हम तो नीचे नीचे का देखते हैं। तो 2012 का भी अब शोर बढ़ता जाएगा, 2 मासी तो रह गए ना बस, नवंबर दिसंबर, उसके बाद 2012 शुरू है, और लोगों के अनेक प्रश्न, अनेक कंफ्यूजन, अनेक तरह के डर, और कहीं छोटी मोटी घटना हो गई शुरू से ही, जैसे भूकंप वगैरह आजकल में भी आया ना, कल कोई यहां आया, तो ये चलता रहेगा तो भय बहुत बढ़ेगा। हम सबको उन्हें फीलिंग करानी है, हम तुम्हारे साथ हैं। इस देव देवियां फरिश्ते तुम्हारे साथ हैं, डरो नहीं, डोंट वरी, हम यहीं हैं। भय बहुत फैलेगा, भय, दुख, मोह, अशांति, पर भय बहुत ज्यादा होगा। तो हम ये 4 स्वमान, मैं देवकुल की महान रॉयल आत्मा, बाप समान, साक्षी दृष्टा, साक्षात्कार मूर्त, और 2 प्रैक्टिस हम योग की रख लेते हैं जो मोस्ट पावरफुल हैं। सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है। बहुत अच्छा ये अभ्यास है। दूसरा, पिछली बार भी मैंने आपको कहा उसको सब पक्का करते चलेंगे, हम सूक्ष्म लोक में और बाबा का हाथ मेरे सिर पर। कम से कम दो बार गुड फीलिंग सवेरे और शाम, चाहे बाबा नीचे उसका हाथ हमारे सिर पर, चाहे हम ऊपर, तो ये हमें निरंतर बढ़ाते चलना है ताकि विनाश काल में घटनाएं हों फटाफट। जब घटनाएं होंगी तेजी से तो मनुष्य सब कुछ भूल जाएंगे, ब्राह्मणों में भी सब कुछ भूलेंगे लोग, लेकिन जिनको लंबे काल का अभ्यास होगा वो स्थिति तत्काल बन जाएगी और वो सेफ्टी का साधन हो जाएगा। तो ये दो अभ्यास हमारे रहेंगे और जिस दिन बाबा आएंगे उस दिन का अभ्यास वही, मैं इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान, क्योंकि आज स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। फिर देखेंगे बाबा ऊपर से आ रहे हैं, शिव बाबा या दोनों, और सामने आ गए, उनकी किरणें पड़ने लगी। ये अभ्यास आप सिखाएंगे भी सबको, जो भी आपके कांटेक्ट में आए पूछें क्या करें बाबा से मिलने से पहले, तो ये दो तीन अभ्यास आप सबको सिखाएंगे, तो इससे बहुत गुड फीलिंग सबको होंगी। अब बाबा के सीजन में यही लहर चलती रहेंगी, मुझे लगता है जो बाबा ने शुरू की व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति में। वो तीनों बातें आपको फिर याद दिला दूं, पहली थी तुम्हारे पास हर संकल्प को पूरा करने की ताकत है, बाबा का शब्द था ताकत है, तुम्हारे पास हर संकल्प को पूरा करने की ताकत है। इसको याद करने से ही आनंद आ जाता है ना, आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा, तुम्हारे पास मन की रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर है, मन हमारा है, इसको कंट्रोल करने की पावर हमारे पास है। रियलाइज करें सभी, इसको स्वीकार करें, रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है, संपूर्ण कंट्रोलिंग पावर मन की, मन हमें नचाए मन हमें भगाए, इससे हम मुक्त हो सकते हैं। मन को कंट्रोल करने की पावर हमारे पास है, हम उसे डायरेक्शन दे सकते हैं, ये नहीं सोचो ये सोचो। और तीसरी बात, बहुत प्रेरणा, व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर श्रेष्ठ संकल्पों की कमाल देखो। तो जब भी व्यर्थ संकल्प आए तो एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, किसको भी मंत्र बनाएंगे, बाबा ने मना किया है, छोटी सी बात याद रखेंगे, संकल्प चले नो, बाबा ने मना किया है। जैसे अव्यक्त मुरली में आ गया संडे को परफेक्ट अर्थात नो इफेक्ट, तो कोई भी इफेक्ट हो तो याद कर लेंगे नो इफेक्ट, बाबा ने मना किया है व्यर्थ संकल्पों के लिए। इस तरह हम सभी संस्कार मिलन करेंगे, हम करेंगे, दूसरा हमसे करे ये नहीं, हमें करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि योगी बनने के लिए संस्कारों का टकराव माना बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर ली हमने अपने सामने, ना आगे का कुछ दिखेगा न आगे हम बढ़ पाएंगे, बहुत बुरी दीवार, काली दीवार है ये। इसलिए चाहे हमें झुकना पड़े, सुनना पड़े, बाबा का एक दूसरा शब्द है मरना पड़े, है तो खराब सा लेकिन है तो ठीक, मरना पड़े, ज्यादा सहन करना पड़े, लेकिन न खुशी जाए और न टकराव में आकर हम अपने योग को खत्म करें। परिवार वाले जो बैठे हैं वो भी ध्यान देंगे, परिवारों में एक दूसरे के विचारों को सम्मान देना, जल्दी से हां करके बातों को तेजी से खत्म करना, ये कला डेवलप करनी है सबको। ये नहीं छोटी बातें बढ़ाते चलें, कहीं बाप बच्चों के बीच में, कहीं स्त्री पुरुष के बीच में, कहीं माँ और लड़कियों के बीच में, ये संघर्ष रहता है परिवारों में। बातों को जल्दी से जल्दी खत्म करें। बाबा की एक छठी बात भी नोट कर लेंगे, बाप समान में हम दाता हैं, जैसे हमारा बाबा दाता है हम भी दाता हैं, तो देने वालों को बहुत सुख मिलता है। बच्चे गलती करेंगे, छोटे गलती करेंगे, पर बड़ों को न स्थिति बिगाड़नी है और देना है, स्नेह देना है, सम्मान देना है। पर छोटों को भी सम्मान देना पड़ेगा आजकल, बड़ों को छोटों को सम्मान देना पड़े तो शांति हो। तो ऐसा ध्यान रखते हुए हम सब संकल्प करें कि बाबा को हम अपने जीवन से, देखो इतने भाई बहने बैठे हैं, 150 से भी ज्यादा बैठे होंगे, सब संकल्प कर लें हमें बाबा को ये एग्जाम्पल दिखाना है कि हम संस्कारों का मिलन करके चल रहे हैं। नो टकराव। ओम शांति।